नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय
कृष्णाय वासुदेवाय
देवकीनन्दनायक
देवकीनन्दनायक
नन्दगोपकुमाराय
नन्दगोपकुमाराय
गोविन्दाय नमो नमः
गोविन्दाय नमो नमः
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे
स्वाद यहाँ श्रीनाथ जी मंदिर के प्रांगण के छोटे इस कक्ष में श्रीमद्भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय हंस गीत के ऊपर चर्चा में आप सबका स्वागत है। हीरालाल जी ने एक मिलन में चर्चा की थी कि हर शनिवार को हंस गीत के ऊपर चर्चा होती है, तो ये बहुत हंस गीत सांख्य योग है, हंस गीत सांख्य योग है। सांख्य का अर्थ होता है विश्लेषण करना, जैसे पानी का सांख्य होता है दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, उसको पानी कहते हैं। ऐसे हमारा अपना विश्लेषण किया जाए, पूरी प्रकृति का सांख्य का मतलब एनालॉजिकल स्टडी की जाए। जैसे सोना है तो उसका विश्लेषण करेंगे कि इसमें सोना कितना है और इसके अंदर दूसरा माल कितना डाला हुआ है, कितना क्रेट है, ये विश्लेषण हो जाएगा। तो आभूषण कितने भी रंग रूप के हो लेकिन असली जब ढूंढेंगे तो कहेंगे ये 12 क्रेट है कि 18 है, इस तरह के बोलना पड़ेगा। तो इसको विश्लेषण कहते हैं। अब ये शुरू होता है, प्रसंग शुरू होता है, भगवान 13वां अध्याय शुरू ही ऐसे करते हैं कि प्रकृति के तीन गुण, इनका प्रभाव तो बुद्धि के ऊपर होता है, आत्मा से इसका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इस शरीर में बुद्धि आत्मा को अपनी ओर खींच लेती है। बुद्धि और आत्मा का तदात्म्य जब हो जाता है तो ये शरीर के अंदर आदमी बंधन में पड़ता है। तो ये कथा बताते बताते भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कह दिया कि ये उपदेश पहले मैंने मेरे शिष्य सनक आदि को दिया था। आगे आ जाओ बेटा, कोई पीछे आने वाले बैठ सकते हैं, जरूरत नहीं है। ऊपर बैठो बेटा, पूछिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बोल दिया कि मैंने ये शिक्षा सांख्य योग की और अष्टांग योग की। सांख्य योग को कहते हैं ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग को कहते हैं योग मार्ग। इन दोनों की शिक्षा मैंने मेरे शिष्य सनक आदि को दी। तो उद्धव ने प्रश्न पूछा कि भगवान आपने कौन से अवतार में, किस रूप में, कब और कैसे ये शिक्षा दी। तब भगवान 20वें श्लोक से हंस गीत शुरू होता है और ये 40 श्लोक तक जाएगा। तो 20 से 40 तक ये 21 श्लोकों में हंस अवतार का उपदेश है। हंस अवतार भगवान ने क्यों लिया, विश्लेषण करने की शक्ति किसके पास है, जो हंस का क्या काम है, दूध को पानी से अलग करना। तो हंस अवतार का मतलब है भगवान अब आत्मा को प्रकृति के 24 तत्वों से अलग करके दिखाएंगे। विश्लेषण ये होता है कि सारी प्रकृति 24 तत्वों की बनी हुई है और आत्मा उससे विलक्षण है। इस 24 तत्वों को भी मोटे रूप में भगवान ने भगवद गीता में कहा है अष्ट भिन्न भिन्न अष्टदा प्रकृति ही पंच महाभूत पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि और तीन मनो मन बुद्धि और अहंकार ये आठ मुख्य है इसको प्रकृति कहते हैं और ये निम्न स्तर की भौतिक जड़ प्रकृति है। इनसे अलग मेरी एक और प्रकृति है जो चेतन है उसको जीवात्मा कहते हैं। ये सातवां अध्याय भगवत गीता का है। ये सातवें अध्याय का श्लोक है कि अष्ट आठ जड़ प्रकृति आठ में पांच मोटे और तीन सूक्ष्म पांच मोटों का ये शरीर बना हुआ है तीन सूक्ष्म का मन बुद्धि और अहंकार वो सूक्ष्म शरीर है इनसे आत्मा अलग है। ये विश्लेषण तो भगवान ने हंस रूप में जब बोले हंस अवतार कब लिया बोले ब्रह्मा जी के चार पुत्र जो ज्ञानी हैं सनक आदि कुमार वो ज्ञान का वो ज्ञानी है उनको माना ही ज्ञानी जाते हैं। वो ज्ञान जिसके उन्होंने गुरु भी नहीं किया वो जन्म से ज्ञानी है और सबसे पहले इस सृष्टि में मानसिक पुत्र हैं ब्रह्मा जी के और अभी तक हैं और चिरंजीव जीवी हैं उनकी उम्र बड़ी है और वो बहुत बड़े विद्वान हैं। शंकर के साथ उनका हमेशा ज्ञान गोष्ठी होती रहती है कैलाश में जाके नारद को वो मिलते हैं नारद को भागवत का उपदेश उन्होंने किया भागवत के महात्म में हरिद्वार में आके और भागवत में कई जगहों पे चार कुमारों के आने का वर्णन है अन्य शास्त्रों में सब जगह मिलेगा। तो एक दिन चार कुमार अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए उनसे एक प्रश्न पूछा कि पिताजी ये मन के अंदर गुण प्रकृति के गुणों के अंतर्गत जो विषय है वो मन में प्रवेश करते हैं विषय किसको कहते हैं पांच विषय हैं आंख का विषय क्या है दर्शन रूप आंख का विषय है शब्द कान का विषय है गंध नासिका का विषय है और स्वाद जीभा का विषय है और स्पर्श त्वचा का विषय इनको बोलते हैं पांच विषय पांच इंद्रियों के विषय इसको पांच इंद्रियों के विषय मानते हैं। तो ये विषय इंद्रियों के द्वारा किसमें प्रवेश करते हैं मन में और मन विषयों की तरफ आकर्षित होता है तो ये दोनों ऐसे आपस में मिले हैं इसको अलग कैसे किया जाए ये प्रश्न पूछा चार कुमारों ने। तो चार कुमारों का प्रश्न क्या है कि मन को विषयों से अलग कैसे किया जाए मन में विषय आते हैं और विषयों में मन हमेशा भागता रहता है। अब हमारा मन विषयों में भागता है कि नहीं भागता है भूख लगती है तो खाने के लिए जबान भागती है और आंख भागती है किसी को देखने के लिए पैसा देखने के लिए भी भागती है आदमी देखने के लिए भागती है तो ये विषयों में मन भागता है और विषय मन में आके बैठ जाती हैं इम्प्रेशन बना के तो इनको कैसे निकाला जाए और ब्रह्मा जी इसका उत्तर नहीं दे पाए। क्यों नहीं उत्तर दे पाए उसका कारण ये बताते हैं ब्रह्मा जी ही रजोगुण को धारण करके सृष्टि करते हैं तो जो सृष्टि के कार्य में लगता है और रजोगुण का जिसके जो रजोगुण धारण करता है वो इस शुद्ध तत्व का विश्लेषण करने में समर्थ नहीं होता। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने चिंतन किया भगवान का कि ये प्रश्न तो मेरे बच्चों ने पूछा है लेकिन मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। तो एक तो ये बात समझ में आती है कि जब शिष्य या बच्चा कोई प्रश्न पूछे सबका उत्तर हमको आए ये जरूरी नहीं है। जब ब्रह्मा को नहीं आता है जो चार वेदों का देने वाला है तो हम कहां से उत्तर दे सकते हैं। तो हमको पहले ईमानदार होना चाहिए जब नहीं आता मन में आए तो बोला जी इसका अर्थ मेरे को नहीं आता है भगवान को प्रार्थना करते हैं भगवान प्रार्थना परमात्मा के रूप में हृदय में है कोई प्रेरणा दे देगा तो आपको उसका उत्तर दे देंगे नहीं तो शास्त्र में मिला तो कभी बोल देंगे हमको इसका उत्तर नहीं आता है। ये ईमानदारी भी बहुत जरूरी है और ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे इसका उत्तर तो नहीं समझ में आता भगवान को प्रार्थना करते हैं तो उस वक्त श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी मैं हंस के रूप में उनके सामने प्रकट हो गया और उस अद्भुत हंस को देखकर मेरे हंस के रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने मेरी पूजा की अपने बच्चों के साथ। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी ने पहचान लिया कि मैंने प्रार्थना की थी वो भगवान ही मेरी समस्या का समाधान करने के लिए आए तो उसकी पूजा तो की लेकिन सनक आदि कुमारों ने पूछ लिया कि आप कौन हैं ये प्रश्न पूछ लिया कि आप कौन हैं। अब इस प्रश्न को लेकर हंस बोलता है कि आप पूछते हो मैं कौन हूं अगर आत्मा के नाते पूछते हो और आप समझते हो कि सब में आत्मा एक ही है तो भी आपके प्रश्न का कोई अर्थ तो है नहीं भाई। आप जो मैं हूं वो आप सब हो, ऐसा अगर आप मानते हो तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कोई उत्तर हो ही नहीं सकता है। और अगर आप इस शरीर का पूछते हो मैं कौन हूं, तो ये शरीर पांच उन्हीं तत्वों का बना है जिनका तुम लोग बने हुए, तो फिर भी तुम्हारे प्रश्न का कोई उत्तर तो होता नहीं है भाई। मैं कौन हूं अगर तुम मानते हो आत्मा, तो जो तुम्हारे अंदर आत्मा है वो मेरे अंदर है, वो इसमें है, तो इसमें तो कोई अंतर है नहीं। और अगर तुम ये शरीर को जड़ समझ के पूछते हो तो सभी शरीर एक जैसे, तो तुम्हारे प्रश्न का। कई बार शिष्य गुरु के पास जाते हैं ना, तो गुरु पहले पूछे कौन है, तो वो पहले नाम बता देता है बोला बाद में आना, कभी और कुछ बता देता है बोला बाद में आना, जब कभी वो कहता है आपके चरण का दास हूं तो बोलता है आओ बेटो। जब तक उसकी दूसरी अपनी कोई उपाधि बताएगा तब तक उसकी शिक्षा का अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब अभी तक उसने अपने को कुछ और मान के रखा है। जब तक सेवा का भाव नहीं आया, शरणागति का भाव नहीं आया, तब तक वो शिक्षा का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ हंस के रूप में भगवान ने पहले दो चीजों का नकारण किया। सारी आत्मा एक जैसी है, भाई भगवान तो आत्माओं के अंदर नहीं आता है। आप क्योंकि ये अंत में आप जब 40वें श्लोक तक पहुंचेंगे तब भगवान कहने लगे आपने मेरे पूछा था मैं कौन हूं, तो मैं भगवान विष्णु हूं। तो उत्तर देंगे कि मैं विष्णु हूं। आपको दिव्य ज्ञान देने के लिए संख्या की दृष्टि से इस रूप में प्रकट हुआ हूं, उत्तर देंगे। लेकिन उस उत्तर देने से पहले उनके मन में जो दुविधा है, जो डाउट है, जो शंका है, उसका निवारण करने के लिए अभी जैसे ना, क्या मैं आपको बताता हूं मैं आत्मा हूं तो क्या हम सब एक जैसे हैं, तो ये भी उत्तर आपका प्रश्न ठीक नहीं है। अगर आप ये माने कि मैं पांच तत्व हूं तो ये भी ठीक नहीं है। और तब फिर भगवान के तो देखिए मन के अंदर विषय सदा आते रहेंगे और विषय के अंदर मन हमेशा रमता रहेगा, इनको अलग किया नहीं जा सकता। क्यों? ये बने इसलिए है भाई, दुकानदार और ग्राहक को अलग कर सकते हो क्या? अब दुकान खोलो और बोलो ग्राहक नहीं आए तो ऐसे हो सकता है क्या भाई? दुकान खोलोगे तो ग्राहक आएगा, ग्राहक के बगैर दुकान नहीं चल सकता। तो बगैर विष्णु के तो मन का कोई अस्तित्व है ही नहीं, मन तो विष्णु के आधार से चलता है, क्योंकि दोनों को अलग किया नहीं जा सकता। लेकिन आपको इन दोनों से अलग होना पड़ेगा। विष्णु को मन से अलग में करने का बेकार टाइम खराब मत करो, क्योंकि वो अलग होंगे ही नहीं, वो तो आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए ही बने हुए हैं, वो तो नेचुरल है। तो ग्राहक और दुकानदार जैसे नेचुरल है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। सूर्य और सूर्य के प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बने ही आपस में मिले हुए हैं। इसलिए तुम्हें अगर उनसे अलग होना है तो उन दोनों से तुम अलग हो जाओ। तो उन दोनों से मैं कहते हैं ये तीन अवस्थाएं आज हमने पढ़ी, सोपन अवस्था पढ़ी, जागृत अवस्था पढ़ी और इसके बाद सूर्य है, वो परमात्मा का स्तर है। जब इन तीनों से ऊपर उठोगे तब तुम मुझे समझ सकोगे। तो भगवान ने हंस अवतार में विशेष उपदेश ये दिया कि मन को विष्णु से अलग नहीं किया जा सकता। मन और विष्णु दोनों को आत्मा से पहले अलग करके देखना पड़ेगा कि ये दोनों आत्मा से अलग है। इसलिए ये जो आज का श्लोक पढ़ा इसमें ये दिखाया गया है कि शरीर जागते इंद्रियों के द्वारा भोग करता है और स्वप्न में मन के द्वारा भोग करता है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में शरीर ही भोग करता है, भौतिक शरीर करता है बाहर का या सूक्ष्म शरीर करता है, या तो स्थूल शरीर भोग करता है इंद्रियों से या सूक्ष्म शरीर करता है। आत्मा इन दोनों से अलग है, वो इन दोनों का दृष्टा है। दृष्टा का अर्थ ये होता है कि जैसे दो लोग आपस में नीचे लड़ रहे हैं, आप अपनी बालकनी में खड़े हो तो लड़ रहे हैं, वही गिरेंगे चोट लगेगी, आपको तो कुछ नहीं होगा ना। ऐसे आत्मा असल में दृष्टा है, लेकिन उसने अपने आप को बुद्धि के माध्यम से इस शरीर के साथ तदात्म्य कर लिया। वो ऐसे जैसे आप अपनी गाड़ी नई में चढ़ के जाएं और गाड़ी को खराश लगे तो आपको लगेगा मेरे को लगी, अब ऐसे खुद करेंगे। इसका मतलब आपने गाड़ी को अपने आप से जोड़ के रखा है। जो गाड़ी को चोट लगी आपको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने इतना गाड़ी से अपना तदात्म्य किया है कि गाड़ी के निशान को आप अपने ऊपर निशान मानते हैं। ऐसे ये शरीर और मन के होने वाली चीजों को हम आत्मा से तदाक में कर लेते हैं। इसका दूसरा उदाहरण प्राय हम सब बहुत सरलता से समझने के लिए देते हैं। टेलीविजन के अंदर देखते हुए सीरियल में आप थोड़ी देर के लिए हीरो या हीरोइन से तदाक में कर लेते हो, एकता कर लेते हो, उसको दुख होता है तो आप रोने लगते हो और उसको खुशी होती है तो आप खुश होने लगते हो, जबकि उस फिल्म के अंदर उसको दुख भी नहीं आया, आप तो यहाँ रो रहे हो और उसको वो पैसे कमा रहा है, वो तो पैसे ही कमा रहा है लेकिन आप मुफ्त में घर में बैठ के रो रहे हो क्योंकि आपने थोड़ी देर के लिए उसके साथ अपना तदात्म्य कर लिया था। तो ऐसे हमने शरीर के साथ तदात्म्य कर लिया है, इसको बोलते हैं देह बुद्धि, यानी हमारी बुद्धि आत्मा से हट के देह बुद्धि हो गई है। इसलिए भगवान यहाँ क्या सिखाना चाहते हैं अंत अवतार में कि भौतिक चीजों को पहले आत्मा से अलग करके देखो, इसको बोलते हैं सांख्य योग। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं क्योंकि मन का इंद्रियों में विषयों में जाना रोका नहीं जा सकता। अब क्या करना चाहिए? तब भगवान की शिक्षा असल में ये है कि तुम्हें देखना, मन को देखने की आंख से देखेगा ही, मन बंद नहीं करेगा देखना, तुम्हें देखना ही है तो भगवान का रूप देख लो। एक श्लोक है, मद रूप मेरे रूप को देख लो, तुम्हें सूंघना ही है तो मेरे चरणों में लगी हुई तुलसी और चंदन को सूंघ के तुम अपने जीवन को सफल कर लो, तुम्हें सुनना है तो मेरी कीर्ति सुन लो, मेरा कीर्तन सुन लो, मेरी कथा सुन लो, तुम्हें चखना है तो मेरा प्रसाद खा लो, तुम्हारे को चलना है तो मेरे मंदिर की तरफ चलो, मेरे दर्शन में आ जाओ, तुम्हारे हाथों से कुछ करना है तो मेरे मंदिर के अंदर झाड़ू निकाल के सफाई कर दो। तो अब तेरी इंद्रियां जो बाहर भौतिक भोग में जाती थी वो सब मेरी सेवा में लग जाएंगी। तो ऐसे इन सब कामों करने का उदाहरण भागवत में अम्बरीश महाराज है, जिसने अपने सारी इंद्रियों को और मन की वृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो अब दो हिस्से हो गया, इसका दो भाग हो गया। पहला भाग ये हुआ कि इंद्रियों को और मन को आत्मा से अलग करो। अलग थोड़ी देर के लिए सिर्फ कर सकते हो, कितनी देर के लिए? जब तक कथा में बैठे तब तक कर सकते हो, बाहर जाते ही आंख से चप्पल देखोगे तब मिलेंगे। अब ये नहीं कर सकते हो कि मैं आंख बंद करके बाहर जाऊंगा। एक दूसरी दृष्टिकोण ये भाग बगीचा में दी गई है, आप आंखें खोल के पूरे शहर में घूमे हैं ना, आपने कितने लोग देखे होंगे, कितनी गाड़ियां देखी होंगी, कोई याद है? कुछ भी याद नहीं। एक आपने अपना मित्र देख लिया हजारों के अंदर तो आपके मन में चपक गया, अपनी गाड़ी का नंबर देख लिया तो कौन ले जा रहा है तू? तो इसका मतलब है देखने में कोई परेशानी नहीं है, चपकना परेशान है भाई। हर रोड पे हजार आदमी देखते हैं, कुछ भी असर नहीं चपकता है, लेकिन एक अपना देख लिया तो चपक जाता है। तो चपकना बंधन होता है, देखना बंधन नहीं, सुनने में बंधन नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति हो जाना, किसी में राग हो जाना, वो बंधन है। तो बंधन देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, उसमें आसक्ति होना बंधन है, उसको अपने से जोड़ लेना बंधन है। तो पहला तो हमारे को सांख्य गीत के अंतर्गत सांख्य दर्शन से भौतिक पदार्थों को, जड़ पदार्थों को चेतन आत्मा से अलग करना है। इसको न्याय कौन से? ये अनव्य व्यक्तिकर न्याय के अंदर, भाई सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। असत क्या है? जड़ पदार्थ असत्य है, सदा रहने वाले नहीं है। इसी के लिए असतोमा सत गमय, भाई संसार में असत चीजों को पीछे मत भागो, सत्य की तरफ चलो। तो पहले ये करना। फिर दूसरा प्रसंग एकदम उठता है कि ये थोड़ी देर के लिए सिर्फ हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इंद्रियां, जब तक हमारा शरीर है तो इंद्रियां अपने विषयों में रमन करेंगी और मन अपने विषयों में जाएगा और विषय मन में आएंगे, ये तो रहेगा। अब इसका मतलब शरीर को खत्म करके नहीं, इस शरीर को भी समाप्त नहीं करना, अब इस इंद्रियों के विषयों का जो विषय है वो बदलना पड़ेगा, सब्जेक्ट बदलना पड़ेगा। अब जो वो बाहर जा रही थी संसार में भोग के लिए, उनको सब सेवा में लगा। तो सिर्फ भोग की भावना को बदल के सेवा की भावना में कर देने से फिर मन के अंदर क्या आएगा? अभी तो विषय आते हैं मन के अंदर, फिर मन के अंदर भगवान का दर्शन आएगा, जब उसके अंदर जाएगा तो भगवान का दर्शन आएगा, तो वो भी विषय है, भगवान का दर्शन भी विषय है, लेकिन वो ऐसा विषय है कि जिससे बंधन नहीं होता। तो पहला स्टेज अलग करने का, दूसरा स्टेज उसको पॉजिटिव एंगेज करने का। प्रायः ज्ञान मार्ग में सिर्फ अलग करने तक की प्रक्रिया होती है, इसके आगे की प्रक्रिया नहीं। यहाँ ज्ञान मार्ग समाप्त होता है, इसलिए इसके बाद योग का अभ्यास भगवान सिखाते हैं। इसी में योग का मतलब है, आपने यदि आत्मा को शरीर से अलग किया तो इस आत्मा को समाधि में लगा के परमात्मा का दर्शन करो, योग का अभ्यास करो। तो ये दूसरा पॉजिटिव स्टेप बताएंगे एकदम, कि सिर्फ ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, अलग तो ग्रहणों को कर दिया लेकिन उससे क्या हुआ। अब पॉजिटिव एंगेजमेंट भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट में भगवान को देखने का पहला अभ्यास योग से, फिर भगवान की सेवा में लगने का अभ्यास, उसको प्रेम करने का अभ्यास भक्ति। तो असल में आगे क्योंकि ये 24 अध्यायों का प्रकरण है पूरा उद्धव गीता, तो हम 13वां अध्याय तो 11 स्कंद का है, उद्धव गीता का 7वां अध्याय है। उद्धव गीता का ये 7वां अध्याय है, सिर्फ 5 अध्याय पहले तो सामान्य मुक्ति के अलग है, तो ये तो 7वां अध्याय है। तो इसके जब अंत में पहुंचेंगे तो भगवान अंत में कहेंगे कि अब ये सब कुछ करने के बाद उद्धव तुमको मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए और मेरी शिक्षाओं के अनुसार प्रचार करना चाहिए, अंत में भगवान जी कहेंगे। लेकिन इस वक्त इस एक श्लोक के अध्याय के आधार पे निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि ये 24 अध्यायों की बात है, इसलिए इसको पूरा सिंह लास्ट में हमने कई जगह एक एग्जाम्पल दिया। हम जब पढ़ते पढ़ाने के लिए हमको टीचर ट्रेनिंग कोर्स में हम पढ़ते थे मेडिकल, एक हमारे को शिक्षा देते हुए कहा कि आदमी को जब जल्दी होती है ना टाइम की, तो उसको ध्यान नहीं रहता है कि असली चीज क्या है। तो हमको एक पेपर दिया, पेपर ऐसा दिया जिसमें लिखा था जो पहले पेपर करके वापस देगा वो उसका नंबर फर्स्ट है, क्या लिखेगा उससे मतलब नहीं है। उसमें इतने परसेंट सिंपल से 2 और 2 कितना होते हैं, उनमें से -1 करो +2 करो -3 करो, तो ऐसे सबने उन्हें जल्दी करना शुरू किया। लेकिन एक ने नीचे से देखा, नीचे लिखा होता कुछ भी मत करो अपना नाम लिख के दे दो। अब वहां तक जब पढ़े तब ना, जब नीचे तक पढ़ जाए इसलिए कहते हैं पहले पूरा पढ़ लो फिर निर्णय निकालो। तो इसमें जब वहां पहुंचेंगे तब भगवान, जैसे भगवद गीता में सारी कर्म योग बता के, ज्ञान योग बता के, ध्यान योग बता के, जब 18वें ध्यान गया तब कहते सर्वधर्मान परित्यज, तब वो छोड़ो मेरे शरण में आ जाओ। अब एक ही शब्द में कहिए भाई सब छोड़ दो मेरे शरण में आ जाओ, तो वो अंतिम लाइन जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि भगवान चाहता थे ये। इसलिए इस पूरे का बर्ड व्यू से पूरा जब ऊपर से देखेंगे तब असल में ये समझ में आए। तो हंस गीत का विशेष उद्देश्य है सनक आदि ऋषियों को भगवान के द्वारा दिव्य ज्ञान देना, उसके लिए सत्वगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। यह अध्याय शुरू होता है 3 गुणों से, और 3 गुण शरीर से और शरीर के अंदर बुद्धि से ही तदात्म्य के कारण होते हैं। आत्मा 3 गुणों से परे होता है, इसको पहले सत्वगुण तक आना है, 2 नीचे के गुणों से ऊपर उठना है, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठना है। तमोगुण में आदमी आलसी होता है और रजोगुण में आदमी लोभी होता है। तमोगुण की पहचान आलस है, कल करेंगे परसों देख लेंगे, ये हो गया रजोगुण। और लोभ रजोगुण की पहचान है, सत्वगुण की पहचान है ज्ञान। सत्वगुण का व्यक्ति ज्ञान में रुचि रखेगा। तो देखिए इसका दूसरा अर्थ मत निकालना, प्राय मंदिर में तो 1000 लोग रोज आते हैं, लेकिन प्राय भगवान को यही कहने वाले आते हैं कि हमारे दीनार बढ़े, यही करने वाले आते हैं ना। तो प्रकृति रजोगुण की लाते हैं, और कुछ तो हमारे ऐसे कि हमसे कुछ नहीं होता है भगवान आप ही सब कीजिए, वो ऐसे करके तमोगुण ही जाकर सो जाते हैं कि भगवान करेगा अपने आप। लेकिन आप जैसे कोई दस्य होते हैं जो यहाँ आने का अर्थ है कि बैठ के कुछ ज्ञान अर्जन, ये सत्वगुण का वातावरण, इसको सत्वगुण कहते हैं। मंदिर ऊपर सत्वगुण से ऊपर है, उसको कहते हैं शुद्ध सत्वगुण से ऊपर का स्थान होता है भगवान का मंदिर। लेकिन मंदिर के अंदर सत्संग में साधु संग करना और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, ये असल में सत्वगुण की पहचान है। लेकिन इसको सत्वगुण में आने के बाद ज्ञान है सत्वगुण में, उसका भी एक अहंकार होता है, वो बंधन में डालता है। इसलिए इस उद्धव गीता में भगवान कहते हैं उस ज्ञान को भी छोड़ो, सत्वगुण में आओ फिर उसको भी छोड़ो। तो कोई कहेगा फिर जरूरत क्या है सत्वगुण में जाने की, उसको छोड़ना भी है। तो इसलिए उत्तर देते हैं कि भाई लकड़ी लाए, फिर आग जलाए, फिर आटा लाए, पानी लाए, फिर रोटी बनाए, उसके बाद आग के ऊपर पानी डाल के बुझा दे। बोला आग बुझानी थी तो जलाई क्यों, बोला जलाई नहीं तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी बनानी है तो जलानी पड़ेगी फिर बुझानी पड़ेगी। तो पहले तो एक एक गुण से निकलना पड़ेगा। आगे एक महात्मा उदाहरण दिया करते थे, एक खेत में चार आदमी चोरी करने के लिए, हमारे देखा रोज फल कोई चोरा के जाता है, तो एक दिन छुप के बैठा तो चार आदमी आए, उसने देख लिया, चारों से लड़ तो नहीं सकता हूँ, क्या करना चाहिए। उसने देखा कि एक आदमी तो सत्वगुण का है, एक रजोगुण का है, एक तमो रजोगुण, एक तमोगुण का है। तो पहले तो उसने कहा ब्राह्मण देवता आप तो सत्वगुण में है, आपके घर तो हम प्रसाद रूप में फल दे के जाएंगे, आप आने की कष्ट क्यों करते हैं, आप तो भूदेव है, परमा प्रणाम कर लिया। फिर क्षत्रिय रजोगुण में बोला महाराज आपको तो टैक्स के रूप में हम देते ही हैं, आके जाएंगे, आप इतनी परेशानी के करके यहाँ क्यों आ गए। और फिर देखा वो जो निम्न स्तर का था तमोगुण का व्यक्ति, उसको मारिए झापड़, तुम्हारे बाप का है खेत यहाँ से उठाते हो, उसको निकलो यहाँ से घर छोड़ के, वो तो चला गया। अब उन्हें एक को भगा दिया। फिर कहता है व्यापारी जी आपको तो पैसा दे के हम सामान लेते हैं ना, ये तो भाई ये तो राजा है, इसको तो टैक्स देंगे, ये ब्राह्मण था, लेकिन तुम तो पैसे लेते हमारे सामने आपसे चोरी क्यों करते हो, रखो या सामान निकलो, उसको डंडा मार के निकाल दिया। अब क्षत्रिय को कहता है महाराज आपको टैक्स देना और हमारी रक्षा करना आपका धर्म है कि हमारी चोरी करना, रखो सामान या निकलो यहाँ से, उसको भगाया। फिर ब्राह्मण को कहते महाराज आप हमको शिक्षा देने वाले, आप ही चोरी करोगे तो हम किसके पास जाएंगे, रखो सामान निकलो। फिर चारों को भगाया। तो ऐसे पहले तमोगुण को भगाना पड़ेगा, तब दो गुणों को थोड़ा सा प्रार्थना करके बोलना पड़ेगा रुको तुम बहुत भले आदमी हो, नहीं तो जाएंगे नहीं। एक को पहले तमोगुण को भगाना, फिर रजोगुण को भगाना, फिर सत्वगुण को भी कहना चाहिए तुम ये क्या कर रहे हैं, मेरे को कहां दुनिया में अहंकार में बांध रहा है, मैं ही बड़ा विद्वान हूं। नहीं नहीं, फिर शुद्ध सत्वगुण में भगवान त्रिगुण अतीत है, भगवान तीनों गुणों से परे है। भगवान को जानने के लिए हमको तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। दो जगह भगवद गीता में भगवान कहते हैं, पहले कहते हैं निस्त्रिगुण भव अर्जुन, वहां बात वेदों के अंदर तीन गुणों के अंतर्गत स्वर्ग प्राप्ति का बहुत बड़ा उल्लेख है, इसलिए तुम इन तीनों गुणों से ऊपर आ जाओ। अर्जुन ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया दूसरे अध्याय में। तो चौदहवें अध्याय में अर्जुन ने खुद ने स्वयं ने फिर कुछ प्रश्न पूछ लिया कि भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए, और तीन गुणों से ऊपर होता है उसकी पहचान कैसे हो। तब भगवान ने तीनों गुणों से ऊपर व्यक्ति उसकी पहचान बताते हुए तीनों गुणों से ऊपर जाने का साधन बताया। अविद्यायेन भक्ति योगेन सम गुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति योग के द्वारा तीनों गुणों से तत्काल ऊपर उठा जा सकता है, एक ही माध्यम बताया और कोई साधन नहीं बताया। बोला अविद्यायेन भक्ति, कैसी भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब इधर उधर भटकने वाली, अविभिचारणी विभिचारणी पतिव्रता स्त्री को कहते हैं अविभिचारणी, और जो घूमती फिरती है रोड पे उसको कहते हैं विभिचारणी। तो भक्ति कौन सी, अविभिचारणी भक्ति योगेन, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे तब ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाओगे। ब्रह्म भूयाय कल्पते, जब ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाओगे, स्तर में पहुंच जाएंगे, तब शुद्ध सत्वगुण का स्तर आ जाता है। ये शुद्ध सत्वगुण का स्तर है, यहां से असल में हमारी आत्मा की, परमात्मा की खोज शुरू होती है। यहां तक आत्मा की खोज है, इसके बाद परमात्मा की खोज शुरू होती है। इसलिए कभी लोग कहते हैं आत्म साक्षात्कार और भगवान साक्षात्कार एक ही है, कि नहीं, दो अलग वस्तु है। वो हमारी भाषा में, हम सरल भाषा में समाज समझाते ऐसे हैं, जो छोटी बच्ची बैठती है ना आपके पास, ये छोटी बच्ची अभी इतनी है, तो इसको ये आप इसको प्रेम से बेटा गोद में ले लो, बच्ची है तो वो भी खुश, आप भी खुश, कोई परेशानी नहीं। ये जब 10 साल के बाद ये जब हो जाएगी 18 साल की, तब ये कहेगी मैं लड़की हूँ, اب میں جوان ہو گئی ہوں, میں نے سب سے بات نہیں کرنا چاہیے, سب سے نہیں ملنا چاہیے, تب تک اس کو یہ بوجھ آ جائے گا میں لڑکی ہوں. ایسے دنیا میں سامانیہ طرح ہم جو کچھ کھاتے ہیں, جو کچھ پیتے ہیں, جو سے ملتے ہیں, لیکن جب یہ آدھیاتمک گیان سمجھ میں آ جائے گا تب کہیں گے بھائی ہم کو برا کھانا نہیں ہے, برا کام کرنا نہیں ہے, نشہ کرنا نہیں ہے, ہمیں اس سے الگ ہونا چاہیے. جیسے لڑکی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ تب سے نہیں ملنا چاہیے, یہ تو ایک استر ہو گیا, لیکن لڑکی جوان ہونے سے اس کا جیون سمپن تو نہیں ہو گیا. اب اس کو کیا چاہیے, اب اس کا وواہ ہونا چاہیے, وہ اپنے پتی کے گھر میں سکھی رہ سکتی ہے. تو ایسے سنسار سے سانکھیا درشن کے دوارا بھوتک بندھن سے آتما کو الگ کرنے کے بعد آتما کا وواہ ہونا چاہیے بھگوان سے, تب وہ سکھی ہوگی, کیونکہ بھگوان تو جگت پتی ہے. تو دوسرا استر ہے بھگوان کا ساکشاتکار کرنا اور آتما کو بھگوان کی پریمئی سیوا میں لگانا. پھر وہ رشتہ ہمارا بھگوان کے داس کے روپ میں بہت سرل ہے, بھگوان مالک ہے, ہم داس ہیں. اور داس میں کیا ہوتا ہے, باہر بیٹھے ہوتے ہیں, جب بلاتا ہے تب جاتے ہیں, لیکن داس سے اوپر بھاؤ تھوڑا ہے تو متر بن جاؤ, بلانے کی ضرورت نہیں, دروازہ کھولے کھول کے سیدھے اندر جاؤ, چلے جاؤ, یہ متر کا بھاؤ ہو گیا. وہ ذرا داس سے انترنگ ہوتا ہے, اور متر سے متر بھی دن میں آئے گا, مل کے چلا جائے گا, رات کو گھر چلا جائے گا. اس سے بھی زیادہ بھگوان سے اور پریم بڑھ جائے تو بھگوان کو اپنا بچہ بنا لو, 24 گھنٹے آپ کے گود میں بیٹھا رہے گا, اس کو واتسلیہ بھاو کہتے ہیں. اور ان ماتا پتا بھاو ایک سیما کے بعد ان کا بھی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو جاتا ہے, وہ بھی تھوڑا لمٹ. تو پھر چوتھا مادھوری بھاو ہوتا ہے بھگوان سے پریم کرنا, اس کے سخی بن جاؤں, اس کی سکھا بن جاؤ, ایسے پریم. تو یہ بھگوان سے جب رشتہ استھاپن کرنے کا استر آتا ہے تب سمجھ لیں کہ سانکھیا کے بعد بھکتی یوگ میں پرویش ہوا. بھگوان سے ہمارا ایک نتیہ رشتہ ہے, اس کو بھولنے کے کارن ہم سنسار میں بھٹک رہے ہیں. اس رشتے کو پنہ جاگرت کر کے اور اس رشتے کے انترگت بھگوان کی سیوا میں لگنا, اس کے لیے بھگوان کی کتھا سننا ضروری ہے. اس لیے بھگوان کی کتھا میں وشیش روپ سے بھاگوت جب شرون کریں گے تو کوئی کوئی لیلا آپ کو بہت ایسے لگے گی کہ کتنا اچھا ہے, ایسا بچہ ہو جب ماں یشودا کی گود میں بیٹھا ہے, ہمارا بچہ ایسا ہو. اس کا مطلب آپ کا بھگوان کی طرف واتسلیہ بھاو جاگرت ہو رہا ہے. کوئی کہے گا بھگوان شری کرشن ہماری ایسے متر کا ہو جیسے ارجن کے ساتھ ہو, وہ کیسے اس کی رکشا کر دی, کتنے بڑے گھور شنکر سے اس کو ابار لیا, تو ایسا متر کہاں ملے گا ہم کو. تو بھگوان کی مترتا کا بھاؤ ہو گیا. تو اس بھاؤ میں جو بھگوان کے بھکت ہیں ان بھکتوں کو دیکھو کہ وہ بھگوان کی کیسے سیوا کرتے ہیں, ان کے انوگت ہوں گے تب بھگوان کو پراپت کر پائیں گے. تو یہ ہنس گیتا بہت جان کا بہت مشکل سبجیکٹ ہے, جان کا سبجیکٹ ہے. اس میں کہاں ہم مشکل میں پڑ جائیں گے, آتما اور پرماتما دونوں کو ایک سمجھ کی غلطی کرتے ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جیو پرماتما کا انش ہے, لیکن دونوں کو ایک نہیں سمجھ کے تو پھر تو سیوا ہو سکتی ہے. دونوں ایک ہے تو سیوا کون کرے گا, دونوں ایک ہوگا تو سیوا نہیں ہوگی نا, پریم نہیں ہوگا. بھائی پریم تب ہوگا جب دو ہوں گے, اکیلے سے پریم نہیں ہوگا. تو پریم دھرتا دھرم کا سار پریم ہے, پریم تب ہوگا جب بھگوان اور بھکت ہوگا. تو یہ اوپر کا استر ہے, یہاں تک پورا پڑھیں گے تب یہ آئے گا دیکھنے میں. تو بہت یہاں گرام دیتے ہیں وانی کو ٹائم, 8 بج گیا, 8 بجے کانا گارڈن پہنچنا ہے. بہت بہت دھنیہ واد آپ کا, وشے بہت اچھا ہے. 31 شلوک ہے پورے, اس کو کہتے ہیں ہنس گیت. اس کے اوپر چرچا کبھی